पृष्ठ 179 उपन्यास का विकास। अंग्रेजी उपन्यास। अंग्रेजी भाषा में उपन्यास का उदय रोमांस कथाओं से हुआ है। ये रोमांस कथाएं कौतूहलमय घटनाओं से पूर्ण हुआ करती थी और इनमें चरित्रण का भी अभाव रहता था। इन रोमांस का आरंभ 15वीं शताब्दी के मध्य में मैलोरी द्वारा लिखी हुई मार डी आर्थर नाम की कथाओं से होना माना जाता है। उन कथाओं से नाटकों को भी बहुत कुछ सामग्री मिलती थी और उनके अनुकरण में अन्य कथात्मक रचनाएं भी लिखी गईं। इंग्लिस्तान में भी गद्य का विकास कुछ पीछे ही हुआ। 17वीं शताब्दी में गद्य लेखकों में जॉन बनियन बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका लिखा हुआ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक प्रकार की अन्योक्ति है। उसमें एक कल्पित यात्री की कथा के सहारे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में पृष्ठ 180 साधक की कठिनाइयों का उल्लेख हुआ है। असली अर्थ में रॉबिन्सन क्रूसो सन 1719 का लेखक डैनियल डेफो अंग्रेजी का पहला उपन्यासकार कहा जा सकता है। उसके वर्णन बड़े सजीव हैं और उसमें चरित्रण का भी प्रयास है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध सामाजिक व्यंग्य लेखक स्विफ्ट भी डिफो के भी समकालीन थे। स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स वास्तव में तत्कालीन समाज पर अच्छा व्यंग्य है, किंतु उसमें रोचकता और कौतूहल भी पर्याप्त मात्रा में है। डैनियल डिफो के रॉबिन्सन क्रूसो ने बड़ी ख्याति पाई। उसमें एक जहाज के डूब जाने के कारण निर्जन टापू में शरण लेने वाले नायक की साहसिक कथा है। उपन्यास को चरित्रण की ओर अग्रसर करने में उस समय स्पेक्टेटर में निकलने वाले रोजरली की कवरली आदि चरित्र संबंधी निबंधों को भी बहुत श्रेय है। उस समय के उपन्यासकारों की समस्या पात्रों को रोमांस के आकाश से पृथ्वी की ओर लाने की रही। 18वीं शताब्दी में उपन्यास साहित्य के स्तंभ स्वरूप चार नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वे नाम हैं रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट और स्टर्न। सैमुअल रिचर्डसन के उपन्यासों में पमीला बहुत प्रसिद्ध है। उसने आजकल के से चरित्र प्रधान उपन्यासों का श्री गणेश किया, किंतु उसमें कुछ भावातिरेक अधिक था। फील्डिंग ने उस भावातिरेक का उपहास किया। स्मॉलेट और स्टर्न ने उसकी मुख्यता दी। 18वीं शताब्दी के उपन्यासों में गोल्ड स्मिथ के विकार ऑफ वैकफील्ड ने बहुत ख्याति पाई। उसमें हास्य व्यंग्यपूर्ण चरित्रण के साथ पारिवारिक जीवन की झांकी है। 18वीं शताब्दी में पारिवारिक उपन्यासों का सूत्रपात हो गया था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में स्कॉट ने वेवरली नॉवेल्स के रूप में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक अच्छी देन दी है और जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी के रूप में सामाजिक अथवा सामाजिक व्यवहार संबंधी उपन्यास दिए। 19वीं शताब्दी के मध्य में डिकेंस और थैकरे के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। डिकेंस ने अपने उपन्यासों में स्मरणीय चरित्र दिए। उसके उपन्यासों में चरित्रों का वैविध्य भी पर्याप्त है। उसमें वस्तुवाद के साथ भावातिरेक था। डिकेंस ने, जैसे हमारे यहाँ प्रेमचंद जी ने, मध्य और निम्न श्रेणी के पात्रों को अपनाया था। थैंकरे ने, जैसे हमारे यहाँ प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने, उच्च वर्ग के पृष्ठ 181 लोगों का चित्रण किया था। 19वीं शताब्दी के अंत में उपन्यासों में चरित्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण की प्रथा चल पड़ी थी। उस प्रथा को अग्रसर करने वालों में जॉर्ज एलियट, जॉर्ज मेरेथेट, थॉमस हार्डी तथा मिसेस हम्फ्री वॉर्ड हैं। ये लोग आधुनिकता के अग्रदूत हैं। इनके हाथ में पात्र सामान्य की अपेक्षा वास्तविक रूप से व्यक्त बन गए हैं। नवीन प्रवृत्तियां 20वीं शताब्दी में विशेषकर पहले महायुद्ध के पश्चात लोगों के उपन्यास संबंधी आदर्श बदले। महायुद्ध के पूर्व साहित्य में जिस प्रकार प्राचीन आदर्शों के प्रति असंतोष रहते हुए भी उसके भीतर छिपी हुई एक छेड़ आकर्षण रेखा के दर्शन हो जाते थे वह रेखा भी विलीन हो गई। नैतिक आदर्शों में घोर परिवर्तन हुए। सभ्यता एक कृत्रिम आवरण के रूप में दिखाई देने लगी। सिगमंड फ्रायड का यह प्रभाव पड़ा कि लोग उपचेतना को अत्यधिक महत्व देने लगे और उनकी यह धारणा हो गई कि वासनाओं को जितना दबाया जाएगा वे उतना ही विकृत रूप धारण करेंगी। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के चरित्रण में संगति एक आवश्यक गुण के रूप में न रही। चरित्र का ऊपरी भाग जितना हम देखते हैं वही सब कुछ नहीं, भीतरी तहों में से अवसर पाने पर न जाने कौन सी तह ऊपर आए और व्यक्ति अपने साधारण दृश्यमान चरित्र के विरुद्ध कोई काम कर जाए। डी एच लॉरेंस के उपन्यासों में प्रवृत्ति की झलक है। आत्मा के पेक्षा शरीर को अधिक महत्व मिलने लगा। एडोल्फ हक्सले में इस ओर अधिक झुकाव है। आजकल के उपन्यासों में लॉरेंस हक्सले, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस प्रमुख है। रूसी उपन्यासकारों ने उपन्यास साहित्य की श्री वृद्धि की है। उनमें गोर्की जिसका माँ नाम का उपन्यास हिंदी में अनुवादित हो चुका है। आजकल के नामों में शोलोखेव का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पाश्चात्य देशों विशेषकर इंग्लिस्तान के उपन्यासों की प्रवृत्ति मात्र दी जा सकी है, वहाँ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यहाँ पर यह विवरण इसलिए नहीं दिया है कि हम पाश्चात्य देशों के कथात्मक साहित्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, वरन इसलिए कि हम उसके आलोक में अपने यहाँ की प्रवृत्ति को भली प्रकार समझ सके और पाठक यह भी जान ले कि वहाँ उपन्यास लिखने की विधा कब से चली आ रही है। अब अपने यहाँ का भी कथा साहित्य बहुत प्रौढ़ और पुष्ट हो गया है, उसमें हर प्रकार की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। ऊपर जो वर्तमान उपन्यासों को प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, वे अपने यहाँ के आधुनिक उपन्यासों में भी प्राचुर्य के साथ मिलती हैं। हिंदी के उपन्यास संस्कृत में कहानी साहित्य तो पर्याप्त रूप में था, यहाँ तक कि इस दिशा में भारतवर्ष अन्य देशों का गुरु कहा जा सकता है, किंतु उपन्यास पृष्ठ 182 की कोटि में केवल बाण की कादम्बरी और दंडी का दशकुमार चरित्र ही आ सकते हैं। कादम्बरी की तो ख्याति इतनी बड़ी कि वह मराठी भाषा में उपन्यास के लिए एक व्यापक शब्द बन गया है। अर्थ विस्तार का वह एक अच्छा उदाहरण है। कादम्बरी में घटना और चरित्र की अपेक्षा शैली का अधिक महत्व है। हमारे यहाँ की कहानी में थोड़े बहुत कौतूहल के पुट के साथ उपदेशात्मक अधिक रहती थी। यही बात इन बड़ी कथाओं में भी है। इनमें शैली की भी विशेषता है। हिंदी में संस्कृत के आधार पर लिखी गई किस्सा तोता मैना, सिंहासन बत्तीसी आदि कुछ बड़ी कथाएं लोगों का मनोरंजन करती रहीं, किंतु ये जनता की वस्तुएं थी, साहित्य की वस्तुएं न थी। साहित्यिक कथाओं का प्रारंभ मुंशी इंशा अल्लाह खां की रानी किटकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित था, और सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान से होता है। ये दोनों पुस्तकें संवत 1860 के लगभग लिखी गई थी। इनमें एक चलती भाषा में साहित्यिक सौष्ठव लाने का अधिक प्रयत्न है। हिंदी के प्रारंभिक काल में लिखे गए उपन्यासों में श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु ने विशेष ख्याति पाई। इसको हम हिंदी का पहला उपन्यास कह सकते हैं। परीक्षा गुरु में एक सेठ के लड़के के बिगड़ने और अपने एक मित्र की सहायता से सुधरने के कथानक के सहारे व्यवहारिक उपदेश दिया गया है, जिस उसमें हितोपदेश और पंचतंत्र की शैली है। बीच बीच में नीति संबंधी उद्धरण है। यह प्रवृत्ति पंडित बालकृष्ण भट्ट के 100 अजान 1 सुजान में और भी बड़ी चढ़ी दिखाई देती है। इन उपन्यासों में वर्णन की विशेषता और यथार्थता के साथ उस समय की हास्य व्यंग की प्रवृत्ति के भी दर्शन होते हैं। उस समय के उपन्यासों में राधा कृष्ण दास का निसाय हिंदू भी उल्लेखनीय है। उसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया गया है। उसमें मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों की भांति राजनीतिक आंदोलन के स्थान में गौर अच्छा आंदोलन का चित्रण मिलता है। बंगाल के लोग हमारी अपेक्षा अंग्रेजों के संपर्क में अधिक आए थे। उनके यहाँ उपन्यास का जन्म पहले हुआ था। बंगाल के उपन्यासों के अनुवाद द्वारा हिंदी के उपन्यास साहित्य की कलेवर वृद्धि हुई और इस ओर लोगों की रुचि जागृत हुई। हिंदी के प्रारंभिक काल में बाल रुचि की भांति लोक रुचि कौतूहल और तिलिस्म की ओर अधिक थी। उसमें आजकल का सा उतावलापन भी नहीं था और अध्ययन और लेखन का एकमात्र उद्देश्य था कौतूहल तृप्ति द्वारा मनोरंजन। इस प्रवृत्ति की तृप्ति के लिए बाबू देवकी नंदन खत्री का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। इनके उपन्यासों में कल्पना का आधिक्य प्रधान था। ये उपन्यास फारसी के अलिफ लैला आदि के दस्तानों से प्रभावित थे। उनके उपन्यासों का संसार जादू का संसार था। उनमें तिलस्म और अय्यारी का प्राधान्य रहा। इसी बहिर्मुखी प्रवृत्ति का दूसरा रूप है जासूसी उपन्यास। इनमें भी कौतूहल पृष्ठ 183 की तृप्ति है। एक लाश पड़ी मिली, मिल गई और फिर उनके रहस्य खोलने में ही सारा उपन्यास शेष हो जाता है। ये भी घटना प्रधान उपन्यास की कोटि में आते हैं। तिलस्मी उपन्यासों में घटना का क्रम आगे की ओर बढ़ता है पर जासूसी उपन्यासों में पीछे की ओर जाता है। जासूसी उपन्यास लेखकों में गोपाल राम गहमरी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। वे हमारे यहाँ के कानन डायल कहे जाते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों में कल्पना के साथ बुद्धि तत्व का भी पुट रहता है। हिंदी उपन्यासों के विकास में दूसरी श्रेणी पंडित किशोरी लाल गोस्वामी से प्रारंभ होता है। उन्होंने कौतूहल की वृत्ति को तो कायम रखा किंतु ऐतिहासिकता और सामाजिकता के साथ मनुष्य की सहज रुचि को जागृत करने वाले विलासिता और प्रेम का पक्ष अधिक चित्रित किया। उनके पात्र चाहे विलासी हो पर वास्तविक थे। इसमें सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण भी हुआ है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ 1956 इसी समय का है। इसमें औपन्यासिकता की अपेक्षा भाषा का प्रयोग अधिक है। उनके वेनिस के बाकी में संस्कृत तत्समता का प्राधान्य है और ठेठ हिंदी के ठाठ में हिंदी के ठेठ और निजी रूप की ओर प्रवृत्ति है। इसके पश्चात पंडित लज्जा राम मेहता के हिंदी गृहस्थ हिंदू गृहस्थ आदर्श दंपत्ति बिगड़े का सुधार आदि उपन्यास भी संवत 1956 में से लगाकर 1962 तक प्रकाश में आए। मेहता जी के उपन्यासों में सांस्कृतिक पक्ष अधिक है और चरित्र चित्रण की भी प्रवृत्ति है। हिंदी में बंगला से जो उपन्यास आए उनमें से कुछ तो दहेज आदि कुप्रथाओं से संबंधित थे और कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों के में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों की बड़ी धूम रही। वंदे मातरम वाला राष्ट्रीय गीत बंकिम बाबू के आनंद मठ से ही प्रचार में आया है। इन उपन्यासों में राष्ट्रीय संगठन में बड़ा योग दिया। चरित्रण और स्वदेश उपन्यास लिखने की दृष्टि में से मुंशी प्रेमचंद जी संवत 1937 से 1993 ने युगांतर उपस्थित कर दिया। उनके उपन्यासों में सामाजिकता थी किंतु बंगाली उपन्यासों का सा भावातिरेक न था और न वे बंगाली उपन्यासों की नकल कहे जा सकते हैं। सेवा सदन निर्मला गबन आदि उपन्यास सामाजिक हैं। गबन में स्त्रियों के आभूषण प्रेम का और निर्मला में वृद्ध विवाह का दुष्परिणाम दिखाया गया किंतु उनकी दृष्टि सामाजिक समस्याओं में ही सीमित नहीं रही। रंगभूमि में एक विस्तृत चित्रपट पर राजनीतिक आंदोलन का चित्रण है। उनके और भी उपन्यासों में शोषित और दलित जनता के प्रति सहानुभूति का मानवता प्रधान पक्ष लिया गया है। गबन में उन्होंने प्रसंगवश पुलिस के हथकंडों का अच्छा दिग्दर्शन की दिया है। प्रेमचंद जी ने न सामाजिक अत्याचार सह सकते थे और न राजनीतिक। ब्राह्मणों तथा उच्च कुलाभिमानी लोगों के भंडाफोड़ करने में उनकी विशेष रुचि थी किंतु पृष्ठ 184 वे किसी उग्र क्रांति के पक्ष में न थे। वे गांधीवाद की समझौतापूर्ण नीति के अनुयायी थे। जिस प्रकार कविता में गुप्त बंधु गांधीवादी नीति के प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार उपन्यास क्षेत्र में प्रेमचंद जी ने गांधी जी के आदर्शों का प्रतिनिधित्व किया है। उनका ध्यान हिंदू मुस्लिम एक की ओर भी गया है। कुछ लोग उनको जनवादी कहते हैं। उनके पात्रों में विद्रोह और हिंसा की भावनाएं अवश्य आ जाती हैं, किंतु वे उन्हें क्रियात्मक रूप नहीं दे पाते। पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक संवत 1948 से 2003 का क्षेत्र यद्यपि सीमित था तथापि उनके आदर्श मुंशी जी के आदर्शों से भिन्न न थे। वे निम्न कोटि के पात्रों में जैसे भिखारियों में मानवता के दर्शन कराने में सिद्ध हस्त थे किंतु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि वे मुंशी जी के की अपेक्षा भावुक अधिक थे और भावों के संचारित करने की कला में भी वे निपुण थे। इनके कथानक अपेक्षाकृत सरल और सुलझे हुए हैं। इनके दो उपन्यास हैं माँ और भिखारिणी। माँ में दो माताओं सुलोचना तथा सावित्री द्वारा अपने अपने पितरों पर पड़े हुए प्रभावों की तुलना है। सुलोचना का प्रभाव सच्चरित्रता की ओर ले जाता है और सावित्री का प्रभाव दुराचार की ओर ले जाता है। सुलोचना में आदर्शवाद का प्राधान्य है। भिखारिणी में दिखाया गया है कि भावों की उच्चता उच्च वर्ग का ही एकाधिकार नहीं है। प्रसाद जी 1946 से 1954। रिपीट प्रसाद जी 1946 से 1994 ने कंकाल और तितली नाम के दो उपन्यास लिखे। इरावती नाम का एक उपन्यास अधूरा ही रह गया था, किंतु वह अब उसी रूप में छप गया है। कंकाल में समाज की भव्यता के भीतर छिपा हुआ खोखला कंकाल दिखाया गया है। देखने में तो उस उपन्यास में यथार्थता की पराकाष्ठा लगती है, किंतु वह निरुद्देश्य नहीं है। उसमें तथाकथित उच्चता के प्रति गर्व की भावना पर व्यंग्यपूर्ण चोट है। उसमें एशियाई संघ के रचनात्मक कार्य भी के भी आदर्शवादी रूपरेखा है। तितली में प्रसाद जी के पात्र शहर में रहकर ही ग्राम की चिंता करते हैं। कंकाल और तितली की तुलना में इरावती प्रसाद जी के स्वभाव के अधिक निकट प्रतीत होती है। वह ऐतिहासिक भी है और उसके भाव तथा भाषा शैली भी प्रसाद जी के व्यक्तित्व तथा अन्य रचनाओं के अनुकूल है। प्रसाद जी ने उपन्यास में प्रेमचंद जी के उपन्यासों की अपेक्षा भावना का उत्कर्ष अधिक है। भाषा में तो अंतर स्पष्ट ही है। प्रसाद जी की भाषा प्रायः संस्कृत गर्भित रही है। प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुकूल बदलती है और अपेक्षाकृत सुबोध है। वृंदावन लाल वर्मा ने थोड़े से रोमांस के साथ गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी आदि ऐतिहासिक उपन्यास सिंधी जगत को दिए। इनके उपन्यासों में ऐतिहासिकता के साथ साथ स्थानीय गौरव, स्थानीय रंगत और प्रकृति चित्रण की विशेषता है। इनके पात्र परिस्थिति के अनुकूल अपनी स्वाभाविक गति से चलते हैं और उनकी व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंग्रेजी के पृष्ठ 185 उपन्यासकार सर वॉल्टर स्कॉट की भांति हिंदी में वर्मा जी अकेले ही उपन्यासकार हैं, जिनमें लोक वार्ता को पूरा पूरा स्थान मिला है। विराट की पद्मिनी अधिकतर जनश्रुति और कल्पना पर आश्रित है। उसका वातावरण ऐतिहासिक है, पात्र अधिकांश में कल्पित हैं। गढ़कुंडार का वातावरण भी ऐतिहासिक है और पात्र भी। गढ़कुंडार में हमको बुंदेलखंड की वीर गाथा काल की सी मानात्मा तथा वीर दर्प से प्रेरित पारस्परिक मार काट की प्रवृत्ति मिलती है। बुंदेले ऊंचे और खंगार नीचे, इस संघर्ष में न बुंदेले ही रहे न खंगार ही, खंगार की बढ़ती हुई शक्ति का भी हास हो जाता है, हो गया। ऐतिहासिकता की दृष्टि से वर्मा जी की अन्य कृति झांसी की रानी बहुत उत्कृष्ट है। उसमें सन 1857 की घटनाओं और कारणों पर काफी अच्छा प्रभाव प्रकाश पड़ता है। इसमें रोमांस है किंतु अत्यंत संयत और दबा हुआ है। उषा देवी मित्रा ने भारतीय नारियों के ऊंचे आदर्श उपस्थित किए हैं। उनकी नारियां जैनेन्द्र के त्याग पत्र की मृणाल की भांति परिस्थितियों के कारण भारतीय आदर्श च्युत नहीं हुई है। देश सेवा या तीर्थ यात्रा में अपनी वासनाओं का उन्नयन कर लेती हैं। कजरी पिया, सविता जैसी सहनशील नायिकाएं आजकल के उपन्यासों में कम मिलेंगी। उषा देवी मित्रा ने उपन्यासों के बंगाली भावुकता और अलंकृत शैली के भी दर्शन होते हैं।